Om Shanti. So today we have Nirmala Didi with us, and we are very fortunate to have you, Didi, because she's been a very inspiring teacher for all of us too, and she's been associated with Brahma Kumaris for the past 46 years. By profession, she's a medical doctor and believed in healing patients more of with meditation than with medicine. And Didi was being a very great administrator and an inspiring teacher. She's presently a director of Gyan Sarovar and Asian Pacific region, where she has served many countries and had 72 centers looking over. And now Didi is there with us. And I think for me, I have seen my experience with Didi is little. Very few moments I had the chance. I've seen Didi with less words and more actions. So I feel she is very practical and a good example. So enjoy the session. Om Shanti.
Acha, aap teen din se sab baatein, bahut baatein suni hai, theek hai? Apne shehar mein course kitno ne kiya, jara haath uthana. मेजोरिटी तो यहां सिर्फ रिफ्रेश के लिए आए हैं, ठीक है? हाँ, ज्ञान तो है, रिफ्रेश के लिए आए. अच्छा, तो अभी गीत सुना, शुभ कर्म करो, कोई श्वासों का भरोसा नहीं. तो ये तो समझते हैं ना, श्वास का कोई भरोसा नहीं, कि समझते हैं कि 50-60 वर्ष के बाद अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान को याद करेंगे. 60 वर्ष के पहले खूब कमा लेवे, बाल बच्चों के लिए खुद जमा कर लेवे, और अंत में प्रभु का ध्यान धरेंगे. ऐसे तो नहीं समझते हाँ? कोई ऐसे हैं जो समझते हैं कि 60 वर्ष के बाद भगवान को याद करेंगे. यहाँ यंग तो बहुत कम देखने में आते हैं, मेजोरिटी 40 के ऊपर देखने में आते हैं. तो शुभ कर्म करने के लिए दो बातें जरूरी है, एक तो ज्ञान और दूसरा योग. क्योंकि जब तक समझ नहीं है क्या शुभ है अशुभ है, तब तक हम क्या करेंगे? समझते हैं कि चलो कैसे भी कमाई करो, चाहे चोरी झूठ ठगी कैसे भी कमाई करो, और कुछ डोनेशन के लिए दे दो तो हमारा कर्म शुभ हो जाएगा. तो एक तरफ पाप कर्म भले करते रहो, दूसरे तरफ कुछ दान पुण्य कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा. और कई लोग ऐसे समझते हैं धर्म धर्म है, कर्म कर्म है. धर्म की बातें जब मंदिर में जाते हैं, चलो भगवान को याद कर लो, पूजा पाठ कर लो, सत्संग में जाओ, और फिर समाज में रहना है तो हमको जो दुनिया वाले करते हैं ऐसे ही करना है. यदि हम सदाचारी रहेंगे, सच बोलेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, और यदि हम झूठ नहीं बोलेंगे या ठगी नहीं करेंगे, तो हमारे धंधे में कमाई नहीं होगी. इसलिए नीति नैतिक जीवन को बाजू में रख देते हैं, और धर्म के नाम से जो भी कुछ करना है करते रहते हैं, लेकिन धर्म का अर्थ है धारणा, और धारणा हमें कैसा सोचना है, बोलना है, करना है, उस पर अटेंशन खिंचवाता है। तो इसलिए हमें अपने बोल, अपने सोच और कर्म तीनों पर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम समझते हैं पाप कर्म माना चोरी झूठ, किसी को मारना पीटना वायलेंस क्राइम ये सब गलत है, किसी को मार पीट करना या खून करना या वैश्यागमन करना वही गलत काम है, बाकी थोड़ा मोटा झूठ तो चल जाता है, नहीं तो सच बोलेंगे तो इस संसार में चल नहीं सकेंगे। वास्तव में हमारे सोच पर भी असर होता है कि जो हम सोचेंगे ना तो उस अनुसार हमारा बोलना और करना होगा। इसलिए यदि हम किसी के प्रति नेगेटिव ही सोचते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। पहले तो हम नेगेटिव वातावरण बनाएंगे और उससे औरों को दुख होगा। मिसाल के तौर पर यदि आपको मन में ही गुस्सा आया, बोलते भी नहीं, तो उसका असर क्या होगा जो आपके आसपास है वो आपका चेहरा देखकर समझ जाएंगे ना कि इनको गुस्सा आया है, उनको आपका चेहरा देखकर ही समझ जाएंगे कि इनको गुस्सा आया है, तो फिर क्या होगा कि वो थोड़ा डर जाएंगे और आपसे दूर भागेंगे। फिर आपके बच्चे भी क्यों ना हो, जब देखेंगे माँ बाप का मूड थोड़ा ठीक नहीं है तो जो चालाक बच्चे होंगे क्या करेंगे, लेट्स गो अवे, लेट्स गो आउटसाइड, क्या हम बाहर चले जाएं, माँ बाप के सामने नहीं, खेलना कूदना जो भी है हम करें पर माँ बाप के सामने नहीं करें, नहीं तो चपाट मिलेंगे। तो इसलिए वो चले जाएंगे दूर, दूर भागेंगे। तो क्या है कि हम किसी को भी दुख देते हैं, चाहे मनसा चाहे वाचा या कर्मणा, ये हमारा पाप कर्म होता है। इसलिए हमें अपने सोच पर भी ध्यान रखना है। तो ज्ञान हमें कैसे मदद करते हैं सोचने के लिए, वो हम देखेंगे कि जब मुझे ज्ञान है कि आज यदि कोई गलत काम करता है तो क्यों गलत काम करता है, क्योंकि या तो उनमें ठीक काम करने की काबिलियत नहीं है, या तो वो जानता नहीं है कि कैसे ठीक काम करना है। क्योंकि देखते हैं यदि ऑफिस में कोई मैनेजर है, बड़ी पोस्ट पर है, वो जब देखता है कि जो स्टाफ है वो ठीक काम नहीं करता है, एफिशिएंट नहीं है, तो क्या करेगा, गुस्सा आ जाएगा और फिर कहेंगे ये तो ठीक है ना, यदि वो ठीक काम नहीं करता है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो काम कैसे ठीक होगा, या हमारी कंपनी को इतना नुकसान किया, गुस्सा नहीं आएगा हमको? तो कई बार हम क्या समझते हैं कि गुस्से से ही काम ठीक होगा, परंतु उससे क्या होगा? सबसे पहले नुकसान किसको होगा यदि हम गुस्सा करते हैं तो? हाँ, खुद को होगा ना, हमको ही खुद को नुकसान होगा कि हमारा दिल जलेगा, हमारा मन अशांत हो जाएगा। यदि खाने का टाइम है तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा, यदि नींद का टाइम है तो नींद ठीक नहीं आएंगी, कहेंगे आई कैंट स्लीप, सोच ही चलता रहता है क्या करें कैसे बदला लें। तो इसलिए क्या है कि हमें अभी अपना, यदि हमें पाप कर्म नहीं करना है तो अपने को स्मृति दिलाना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप है। फिर जो गलत करता है उसको समझाने की कोशिश करनी है कि ठीक काम कैसे करना है, या तो उनको ट्रेन करना है ना, जो स्टाफ है यदि उनको ट्रेन करेंगे तो नेचुरली ठीक काम करेगा, या जब हम उनको, जिसको भी एम्प्लॉय करते हैं, उनको हम अपना वर्क डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये आपकी ड्यूटी है, ऐसे ऐसे करना है और इनको रिपोर्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि जितना हम धीरज रखेंगे, सहनशीलता रखेंगे और अपने शांत स्वरूप में स्थित रहेंगे, गुस्सा आएगा नहीं। तो ज्ञान कहता है आत्मभान में रहो तो आपका असल स्वभाव शांत है। ऐसे नहीं कि आपको आई एम यूज्ड टू बी एंग्री, हमारे घर में सबका स्वभाव है गुस्सा करने का। कई बार हम बहाना बताएंगे, मेरे बाप दादा भी ऐसे थे, गुस्से वाले थे, हाँ हमारे माँ भी ऐसी थी, गुस्सा हमारे जैसे कि हमको वर्षे में मिला है। तो या तो माँ बाप का दोष निकालेंगे, या तो काम गलत काम करने वाला का दोष निकालेंगे कि चलो हमने एक बार तो सहन किया, दोबारा सहन किया, थर्ड टाइम नो मोर, अभी हम सहन नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाता है कि वी रिफ्यूज टू बी टॉलरेंट और पेशेंट। तो इसलिए अभी बाबा कहते हैं धीरज से काम लो, सहनशीलता से काम लो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। तो क्या है कि ज्ञान हमें शिक्षा देता है, सच क्या है, झूठ क्या है, किसका रिजल्ट क्या आएगा, और योग से हमें शक्ति मिलेंगी, चाहे सहन करने की शक्ति है, चाहे धैर्य शक्ति है, चाहे मीठा बनने की शक्ति है, वो सब योग के द्वारा आएगा। इसलिए हमारा जो फाउंडेशन है, हमें जो पूरा ध्यान देना है, वो फर्स्ट लेसन जो हमारा है कि हमें आत्मभान में रहना है, वो जितना पक्का होता जाएगा तो बाबा की याद भी रहेंगी और शक्ति भी मिलेंगी। तो सोचने में भी हमको परिवर्तन करना है, बोलने में भी, और नेचुरली है कर्तव्य करते समय तो और भी ज्यादा ध्यान देना। इसलिए बाबा पहले कहते हैं कि पहले अपने कर्तव्य को कंट्रोल करो। चलो गुस्सा मन में आया, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, परंतु हाथ नहीं उठाओ, वायलेंट नहीं बनो किसी के ऊपर, हाँ कुछ उनके शरीर को नुकसान नहीं करो। तो पहले अपने कर्म पर कंट्रोल करो, धीरे धीरे अपनी वाचा पर कंट्रोल करो, और लास्ट में अपने संकल्पों को भी कंट्रोल करो, तो इससे क्या होगा कि आप पाप कर्म करने से बच जाएंगे। तो पहले तो हमको ये समझना है, पाप ये है किसी आत्मा को दुख दिया। अब पुण्य क्या है? पुण्य कर्म ये है कि हम किसी को तन मन या धन से या मन वचन कर्म से सुख देते हैं। यदि हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, समझो आपने अपने परिवार के लिए करोड़ों रुपया जमा किया, मकान दिया, बच्चों को गाड़ी दी, ये क्या हुआ? पुण्य हुआ? हाँ, ये कर्मों का हिसाब किताब हो गया। हाँ, अपने बच्चों को दिया, बच्चा आपके पास जन्मा क्योंकि आपके साथ उनका हिसाब किताब था, या जिम्मेवारी निभाई। यदि बच्चों के प्रति करते हैं, अपने परिवार के प्रति करते हैं, वो जिम्मेवारी हो गई। अच्छे कर्म कहेंगे जरूर कि वो अच्छे कर्म है। चलो हाँ, कोई है अपने माँ बाप है, माँ बाप अपने पास ही पैसा जमा करते हैं, बच्चों को नहीं देते हैं, कंजूसी से चलते हैं, तो नेचुरली ये कर्मों का हिसाब किताब हुआ। परंतु यदि हम अन्य को मन वचन कर्म से सुख देते हैं, वो हमारा पुण्य हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि धन दान करना है, क्योंकि कई बार गरीब लोग सोचेंगे हमारे पास पैसे कहाँ हैं जो हम दान पुण्य करें। नहीं, जरूरी नहीं है कि हमको पैसे से मदद करना है। यदि आप किसी को दो शब्द अच्छे बोलेंगे, उनको कॉन्सोलेशन देंगे, इसका कोई बीमार है, मर गया है, कुछ तकलीफ हुई है, उनको पूछेंगे प्यार से, भाई क्या है, कैसे हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं, तो ये भी एक पुण्य कर्म हो गया। यदि मनसा भी उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कई बार हम मन से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये भी पुण्य कर्म हो गया। मनसा वाचा या कर्मणा, कर्मणा चलो कोई धन से करेगा, कोई शरीर से करेगा, कोई बीमार है हम जाकर उनके सेवा करते हैं, घर काम मदद करते हैं, या खाना पका के ले जाते हैं, उनके लिए दवाई करके आते हैं, उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो ये भी क्या हो गया? पुण्य कर्म। तो चाहे तन से करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, तो ये क्या होगा? पुण्य कर्म हो गया। अब कई बार ऐसे होता है कि हम लोग फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, नासिपास हो जाते हैं कि हम इतना मदद करते हैं, ये लोग हमारा जरा भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जरा भी बदला नहीं देते हैं। तो कई बार क्या होता है, अप्रिशिएशन की चाहना रहती है, कई बार है वो बदले की चाहना रहती है कि भाई हमने उसको उसकी तकलीफ थी मदद की, उनको तो जरूर करनी चाहिए। तो क्या होता है, वो एक्सपेक्टेशन होता है, यदि पूरा नहीं होता है तो मन में दुख होता है, इसलिए अपेक्षा नहीं रखनी है। जो भी आप करेंगे उसको बदला आपको जरूर मिलेगा। नहीं, कई बार कई कहेंगे देखो ये ठगी करके इतना कमाया, इतने पैसे वाला हो गया, तो हम क्यों अभी ऑनेस्टली अपना काम धंधा करें और हमें इकोनॉमिकली चलना पड़े। परंतु वो ठीक नहीं है, पैसे वाले सब सुखी नहीं है, ये समझ लेना। जो धनवान है या जिनके पास संपत्ति है, मकान मोटर गाड़ी आदि आदि है, नॉट नेसली दैट दे आर हैप्पी, क्योंकि हाँ सुखी उसको कहेंगे जो तन से भी तंदुरुस्त है, मन से भी शांत है, और धन भी ठीक है, एटलीस्ट इनफ खाने पीने के लिए है, पहनने के लिए है, रहने के लिए मकान है, तो हम कहेंगे सुखी है। तो इसलिए हमें ये समझना है, क्योंकि जितना हम स्पिरिचुअल बनते जाएंगे, हमारे में रूहानियत आती जाएंगी, तो हम सिंप्लिसिटी पसंद करेंगे, सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए। तो क्या है, मटेरियलिस्टिक लोग आज हैं, उन्हों को क्या चाहिए, वो धन दौलत मिल्कत खजाना सब देखेंगे कि कितना मकान है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी फैसिलिटीज है, परंतु फैसिलिटीज वाले सब सुखी नहीं है यदि बीमार रहते हैं तो, या यदि घर में झगड़ा होता रहता है, या टेंशन है, या कोई मरता है, कोई घर में बीमार है, तो वो कोई सुखी नहीं है ना। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि धनवान है वो सब सुखी है, परंतु तन भी तंदुरुस्त चाहिए, मन भी शांत, और संबंध में भी प्यार का संबंध हो, तब सदा सुखी रहेंगे। तो इसलिए हमें एक तो ये समझना है कि जो कर्म हम करते हैं, भगवान के घर कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि कोई समझते हैं चलो हमने चोरी की, खून किया, ठगी की, कौन जानता है, पैसे तो कमा लिया, हमारा काम तो हो गया, परंतु आप जो कुछ करते हैं उसका बदला जरूर मिलना वाला है, ये समझ लेना है। जैसा बीज वैसा झाड़, तो जो कर्म आप करेंगे उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे उसी समय चाहे देरी से, क्योंकि जैसे हम देखते हैं किसी ने हमारे पर गुस्सा किया तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में हम ये गुस्सा करेंगे, ऐसे होता है ना। तो इसलिए हमें देखना है कि फल मिलेगा, चाहे इमीडिएटली मिलेगा, चाहे थोड़ी देरी के बाद। तो कई बार है बॉस है गुस्सा करता है तो स्टाफ है वो बेचारा कुछ बोलेगा नहीं, परंतु मन में तो रहेगा ना कि ये बॉस बहुत गुस्से वाला है, उसके लिए प्यार या रिगार्ड नहीं रहेगा। या बच्चे हैं, माँ बाप गुस्से वाले होंगे तो क्या होगा, जब छोटे हैं तब तो सहन कर लेंगे, फिर बड़े होंगे तो या तो रिबेलियस हो जाएंगे, या तो कहेंगे चलो हमारी शादी हुई चलो हम चले, बीमार है आप जानो आपका काम, जाने जाओ डॉक्टर के पास, मेरे पास तो टाइम नहीं है, बूढ़े हुए, बूढ़ा घर में छोड़ दिया। तो यदि बच्चों को हम प्यार से नहीं पालना करेंगे तो प्यार से हमारी देखभाल भी नहीं करेंगे ना। तो ये है जो करेंगे सो पाएंगे, कहते हैं ना एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जितना हम जिसके भी लिए करेंगे, चाहे अभी चाहे कभी, उसका फल मिलेगा। हाँ, जैसे हम अनाज बोते हैं तो कोई तो अनाज है जल्दी हमको फसल दे देता है, चलो गेहूं है, चावल है, मकाई है, 6 महीने के अंदर हमको फसल मिल जाती है, उसका रिजल्ट मिल जाता है। परंतु आम का बीज बो और आप अपेक्षा रखो हमको 5-6 महीने में आम मिले, तो क्या होगा, निराश हो जाएंगे। तो मालूम है कि आम के बीज को इतना टाइम लगेगा, उसका फल निकलेगा जरूर। तो वो स्टोरी आप लोगों ने सुनी होंगी कि एक जवान था, वो देख रहा था एक बूढ़ा है, वो आम को बहुत प्यार से पानी पिलाता था, उसका संभाल करता था पेड़ की। तो वो हंसता है कि भाई अभी आप तो बूढ़े हो गए, इतनी आम की पालना करते हैं, पर आपको तो आम का फल खाने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बूढ़ा कहता है, पर मैं अभी आम खा रहा हूँ, किसी ने बोया तभी तो मैं खा रहा हूँ ना, चलो मैं बोऊंगा और कोई खा लेगा। तो इसलिए क्या है कि हम जो करेंगे उसका फल जरूर मिलना है, चाहे जल्दी चाहे देरी से। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि यदि आपको सुख पाना है तो औरों को सुख दो, यदि दुख देंगे तो दुख पाएंगे, ये अपने मन में पक्का समझ लो। तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत संभाल से सोचना, बोलना और करना है। इसलिए गीता में लिखा है, आत्मा ही अपना मित्र, आत्मा अपना शत्रु। क्योंकि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं हम अपने मित्र है, यदि हम बुरे करते हैं तो हम ही हमारे दुश्मन है। फिर हम किसी को दोष देवे तो वो कोई फायदा नहीं। जैसे देखो आज कोई चोर चोरी करता है या खूनी खून करके उसको जेल में भेजा गया, यदि वो जेलर को या जज को गाली देता रहेगा तो क्या होगा, उसकी सजा कम नहीं होने वाली है, और भी बढ़ा देंगे ना। परंतु वो अच्छे मैनर्स रखेंगे, उनकी अच्छी बिहेवियर्स होंगी तो क्या होता है, कई बार सजा कम ही कर देते हैं। परंतु उसके लिए उसको अपनी प्रूफ देना पड़ता है कि वो बाहर जाके फिर से ऐसा गलत काम नहीं करेगा। तो इसी रीत से ये कर्मों की गति भी ऐसी है कि हम दूसरों को दोष देवे उसमें फायदा नहीं है। क्योंकि मुझे याद है हम लोग आगे के जमाने में क्या होता था कि जो विवाह होते थे या सगाई होती थी तो माँ बाप अरेंज करते थे, या कोई बीच में दलाल होता था वो अरेंज कर देता था दोनों की। हाँ, पीछे यदि कुछ गड़बड़ी हुई ससुर में तो कभी कभी बेटी है माँ बाप को दोष देंगे कि ससुर एजेंट को दोष देंगे, इसके कारण अभी हम अभी दुखी है। परंतु क्या होगा, जिसके भी हम संपर्क में आते, चाहे माँ बाप जो हमारे हैं, चाहे पति है, चाहे टीचर है, चाहे फ्रेंड्स है, ये क्या है, एक्सीडेंट नहीं है, ये क्या है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। जिसके भी संपर्क में आते, जो भी सुख देते या दुख देते हैं, सबके साथ हमारा हिसाब किताब है। पिछले जन्म में या पास्ट में जो हमने कर्म किए हैं उसका हमें अभी फल मिलता है, ये यदि हम समझ लें तो इस तो क्या करेंगे, हम और किसी को दोष नहीं देंगे, नहीं तो हम सबको दोष देते रहते हैं। और दूसरा अभी हमें ये समझना है कि अभी का टाइम कौन सा है, अभी कौन से टाइम से हम गुजर रहे हैं, इस युग को क्या कहेंगे, हाँ, कलयुग या संगम युग। संगम युग समझा है, हाँ, कलयुग पूरा हो रहा है और सत्युग आना है, तो ये दो कल्प का बीच का टाइम है। क्योंकि सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, अभी कलयुग के बाद क्या आएगा, फिर से सत्युग आएगा, हम रिवर्स नहीं जाएंगे, कलयुग के बाद फिर सत्युग आएगा। तो कलयुग अंत में जब परमात्मा अवतरित होते हैं, पतित पावन परमात्मा या ज्ञान के सागर परमात्मा जब कलयुग अंत में अवतरित होते हैं तो क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। तो अभी का समय जो समझो आज से 76 साल से क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं संगम युग, क्योंकि परमात्मा अवतरित हो गए हैं, कलयुग का अंत है। समझते हैं कलयुग का अंत है, क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया है। जैसे शास्त्रों में बताते हैं कलंक ही अवतार होता है कलयुग के अंत में, क्योंकि आजकल क्या है कि इतनी धर्म ग्लानी हो गई है जो बाप भी बेटी पर अत्याचार करता है, व्यभिचार करता है, कन्या वर मांगती है, गैया है वो गंदगी खाती है, नहीं तो गैया को गायों को समझते हैं कि वो बहुत पवित्र है, परंतु वो जो भी किचरा है गंद है खा लेती है। समझो व्यापारी सब अनाचार कर रहे हैं ना, जो समझो सब भ्रष्टाचार व्यापार में, और राजनेताएं वो भी अभी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, और धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है। तो ये समझो सब शास्त्रों में चिन्ह बताया कलयुग के अंत का। तो ये अभी ऐसा अधर्म बढ़ गया है कि बाल बच्चे बच्चे भी माँ बाप को समझते कब मरे जब हमको प्रॉपर्टी मिले। तो इसलिए क्या है कि ऐसा जब समय आता है या तो प्रॉपर्टी के लिए खून भी कर लेते हैं, कई राजाओं के इसी रीत से भी खून हो गया उसके बच्चे ने या भांजे ने या भतीजे ने, गद्दी के लिए उसको बाप को मार दिया। तो इस रीत से देखा गया है कि ये समय अभी ऐसा आ गया है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि के लोगों की भगवान से प्रीत नहीं रही, उसकी प्रीत है धन दौलत और वैभव से। तो अभी कभी भी विनाश हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं जो कल करना है सो आज करो, और आज करना है सो आप करो, कल कल करते काल खा जाएगा, क्योंकि कोई भरोसा है आज मौत का? मौत का कोई भरोसा नहीं। बच्चे भी आजकल कुछ एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कि बच्चों को भी कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, बच्चों को भी डायबिटीज के कारण बीमारियां हो जाती है, यंग लोगों को भी हार्ट फेल हो जाता है, और कई वायरस बीमारियां ऐसी होती है जो लोग ऐसे शरीर छोड़ देते हैं, जैसे सार्स की बीमारी बीच में थी, कितने लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड मर गए, नेचुरल कैलमिटीज, सुनामी में 5-6 घंटे में लाखों लोग मर गए, 7 देशों में से। तो इसी रीत से देखा है कि नेचुरल कैलमिटीज है, सिविल वॉर्स है, और एटॉमिक एनर्जी भी हमारे पास अभी बॉम्ब्स इतने तैयार है कि सारी दुनिया का 5 मिनट में खत्म हो सकता है, सिर्फ एक पॉलिटिशियन की बुद्धि बिगड़े तो विनाश शुरू हो सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि मौत कभी भी आ सकता है, इसलिए हम कहते हैं जो कुछ करना है अभी कर लो, अच्छे कर्म करने हैं, अपने जीवन को परिवर्तन करना है अभी करना है। तो इसलिए सोचना नहीं कि हाँ अभी हम 7 दिन का कोर्स तो ले लिया, अभी जब समय होगा तब हम क्लास करेंगे नहीं। ये जैसे बुद्धि का भोजन है, जैसे शरीर का भोजन हम रोज करते हैं, रोज करते हैं, न सिर्फ रोज करते हैं, कितनी बारी रोज करते हैं, मिनिमम तीन, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। परंतु कभी कभी चाय के साथ फिर शाम को 4 बजे 5 बजे भी कुछ नाश्ता टोली कर लेते हैं, या बीच बीच में चाय कप है, या सॉफ्ट ड्रिंक्स है, या फ्रूट जूस है, ले लेते हैं ना। परंतु मिनिमम 3 मील्स तो सब खाते हैं। तो इसलिए परमात्मा भी कहते हैं, चलो रोज कम से कम एक बार ज्ञान स्नान करो और 3 बारी ईश्वर की याद में बैठो और अपने जीवन में बैलेंस रखो कि 8 घंटा आप अपने गृहस्थ व्यवहार, हाउस होल्ड ड्यूटीज है या जॉब है या बिजनेस है, 8 घंटा उसमें दो। 8 घंटा अपने शरीर के लिए चाहिए, 6 घंटा तो नींद का कम से कम होता है, स्नान पानी ये वो सब मिलके 8 घंटा अपने शरीर के लिए दो, तो 8 घंटा अपनी आत्मा के लिए दो, आत्म कल्याण के लिए। उसका मतलब ये नहीं कि 8 घंटा योग में बैठो, परंतु कर्म करते करते ईश्वर की याद रहे, ज्ञान को स्टडी करो, सत्संग करो। तो इसके लिए आप जितना समय निकालेंगे तो उससे क्या होगा, संग से आपका रंग लगेगा आपको, क्योंकि परिवर्तन करना है जीवन को। चलो 7 दिन में आपने कोर्स तो कर लिया, परंतु जीवन परिवर्तन करना है तो उसके लिए समय भी देना चाहिए और मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि ये अविनाशी धन है। ये बुद्धि में क्लियर होना चाहिए कि ये ज्ञान धन, गुणों का धन, स्नेह धन, ये अविनाशी है और उसका उपार्जन करने के लिए, कमाई करने के लिए कम से कम दिन में हम 2 घंटा तो निकाले, चलो 8 घंटा निकाल सको या नहीं, परंतु कम से कम 2-3 घंटा तो निकालो। और ये भी बाबा ने सहज कर दिया है, चलते फिरते खाते पीते बाबा की याद कर सकते हैं, तो योग भी सहज कर दिया है। हाँ, करके बैठकर आप योग करेंगे तो नेचुरली है कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे, एकाग्रता ज्यादा होंगी, परंतु कम से कम चलते फिरते भी काम याद कर सकते हो। तो इसलिए जितना ज्ञान का स्मरण करते रहेंगे, सुनेंगे, जितना योग में आप बैठेंगे और कर्मयोग के ऊपर अटेंशन देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका फिर कर्म भी श्रेष्ठ होगा। नहीं तो चाहते तो हैं कि हम गुस्सा ना करें, चिंता ना करें, टेंशन में ना रहे, परंतु रिजल्ट क्या होती है, हम स्वभाव संस्कार परिस्थिति के वश हो जाते हैं और ये रियलाइज नहीं करते हैं कि ये हमारी वीकनेस है। गड़बड़ तो ये है कि हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हम वीक है, इस कारण फिर क्या करते हैं, स्वभाव अनुसार, परिस्थिति अनुसार हम रिएक्ट करते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि जो हमारी एक्टिंग होंगी उतना हमको फिर रिएक्शन मिलेगा। तो इसलिए जब ये ज्ञान समझ जाते हैं तो पास्ट में जो कुछ हुआ वो तो हुआ, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं ना। जो हुआ उसको तो अनहोनी नहीं कर सकते हैं, परंतु और फ्यूचर में क्या होगा वो मालूम नहीं, प्रेजेंट हमारे हाथ में है। तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट में हमको बहुत सावधान रहना, सोचना बोलना और कर्तव्य हमारे ऐसे हो जो फ्यूचर में हमको पछताना ना पड़े। यूजुअली क्या होता है कि करते समय तो हम कर लेते हैं, परंतु अंत में हम सोचते हैं, जब समझो लोग हैं मालूम होता है कि अभी ज्यादा दिन निकालने नहीं है ना, तो सारे जीवन का अपना पोता मेल देखते हैं कि सारी जीवन में हमने क्या किया, कितना दान किया, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, वो देखते रहते हैं। परंतु वास्तव में हमको क्या करना चाहिए, अपना रोज का पोता मेल देखना चाहिए, अकाउंट्स देखने चाहिए कि आज सारे दिन में मैंने कितना पुण्य किया, कितने आत्माओं को सुख दिया, कितने हमने कितनी आत्माओं को स्वभाव संस्कार परिस्थिति वश दुख दिया। उससे क्या होगा कि यदि हम अपने आप को चार्ट देखेंगे तो दूसरे दिन हम सावधान रहेंगे कि फिर से वो भूल रिपीट ना करें। इसलिए कहते हैं कि टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। भूल करें ना करके हमें पछताना नहीं पड़ेगा, भूल करेंगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए हमको अपने आप के ऊपर बहुत ही अटेंशन देना है कि हमारे से अभी कोई गलत काम ना हो। तो क्या होगा कि हम औरों को जितना भी प्रेम देंगे, सुख देंगे, सांत्वना देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें भी दुआएं मिलती रहेंगी। इसलिए हम कहते हैं और कुछ आप ना दे सको औरों को, क्योंकि धन दान नहीं दे सकते हैं, प्रेम दान तो दे सकते हैं, शांति का दान तो दे सकते हैं, ज्ञान का दान तो दे सकते हैं, और दान में सर्वश्रेष्ठ विद्या दान ज्ञान गिना जाता है, क्योंकि कन्या दान कहेंगे, गौ दान कहेंगे, भूमि दान कहेंगे, वस्त्र दान देंगे, हर प्रकार का दान होता है, परंतु श्रेष्ठ दान है विद्या दान। अभी एजुकेशन भी यदि आप किसी को वर्ल्डली एजुकेशन देंगे, किसी को बीए एमए पीएचडी की डिग्री मिल गई, गारंटी है कि उनको नौकरी मिलेंगी, गारंटी है कि वो सुखी रहेगा? नहीं। तो इसलिए ये ईश्वरीय विद्या ऐसी है कि आपको भी फ्री मिलती है, आप भी औरों को फ्रीली दे सकते हैं, और जितना देंगे इतना बढ़ेगा। प्रेम देने से आपका प्रेम घटेगा नहीं, ज्ञान देने से आपका ज्ञान कमी नहीं होगा। देखो आज मॉनेटरी किसी को डोनेशन देंगे, मदद करेंगे, जितना दान देंगे उतना आपका बैंक बैलेंस नीचे आता जाएगा, परंतु ये दान ऐसा है जो आप दो और भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप लोग किसी को समझाते हो, अचानक इतनी आपके मन में क्लैरिटी आ जाती है, और आप कभी सोचे ना हो ऐसे संकल्प आते रहेंगे या विचार आते रहेंगे या क्लैरिटी आती जाएंगी, जिससे आप समझ सकेंगे कि कैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। तो ज्ञान है, गुण है, शक्ति है, उनका आप दान दे सकते हैं। आप आपका चाल चलन देखकर पहले तो आपकी फैमिली में लाभ होगा ना। बच्चे किससे सीखते हैं अच्छी हैबिट या बुरी हैबिट? माँ बाप से। जो देखते हैं माँ बाप जैसे चलते हैं बच्चे भी वैसे चलेंगे। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे अंदर गुण हो, प्रेम से सबको चलाएं और वो रिजल्ट आप देखेंगे। चाहे बच्चे हैं चाहे आपका स्टाफ है, जितना आप प्रेम से उनका केयर करेंगे आप देखेंगे उतना वो भी आपके लिए संभाल रखेंगे और प्यार देंगे और रिगार्ड भी देंगे, क्योंकि ये सब साथ में जाता है। जितना प्यार होगा सहयोग मिलेगा, जितना प्यार होगा रिगार्ड देंगे और लेंगे। तो क्या है, दुनिया में लोगों को ये नहीं मिलता है। आज धन से आप कार खरीद सकेंगे, धन से प्यार नहीं खरीद सकेंगे। तो ये प्यार है, सुख है, शांति है, आनंद है, ये अविनाशी खजाना आप ईश्वर से योग द्वारा ले सकते हैं। और जितना आपके अंदर होगा वो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन फैलेंगे और उससे अनेकों को लाभ मिल सकता है। तो इसलिए इन बातों को समझकर जीवन में आप जितना लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन भी परिवर्तन होगा, आपकी फैमिली परिवर्तित होंगी और समाज को भी फायदा होगा। अल्टीमेटली हमको घर घर को स्वर्ग बनाना है, तब संसार स्वर्ग बन जाएगा, सब सुखी बन जाएंगे। इसलिए इन बातों को यहाँ ही छोड़ के नहीं जाना, अपने घर भी ले जाना और वहां भी जाकर ऐसे नहीं कहना लाइफ बहुत बिजी है टाइम नहीं मिलता। यमदूत आएगा तो पूछेगा नहीं कि आपने आपने को टाइम मिला या नहीं, दान पुण्य किया या नहीं, अच्छे कर्म किए या नहीं। वो नहीं कहेंगे कि अभी हम वेट हो जाएंगे जब तक आप अपने को तैयार करो, नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, जो करना है जल्दी ही करना और दृढ़ता से करेंगे। जब आपके मन में ये होगा करना ही है तो जरूर करेंगे, टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए आप वहां भी जाकर उसका ज्यादा लाभ लेकर और अपने जीवन को ऐसा दैवी जीवन बनाओ, ऐसी हमारी शुभकामना है। ओम शांति।